جی دیکھیے بھائی آگے سبق. فصلن بدان کے مرکب غیر مفید آنس کے چون قائل برآں سکوت کند سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود و آن بر سے قسمست. اول مرکب اضافی چون غلام و زیدن جزء اول را مضاف گویند و جزء دوم را مضافلے و مضافلے ہمیشہ مجرور باشد. اچھا بھائی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو کہ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اور پھر اس کی 10 قسمیں انہوں نے آپ کو بتلائی تھیں. پہلی قسم امر تھی. امر کا کیا معنی؟ کسی کو کسی چیز کا حکم دینا. جیسے اے ضرب تو پٹائی کر یا اسمع تو سن لے یا اقرا تم پڑھو. تو دیکھو یہ سب کیا ہیں؟ امر ہیں, حکم دیا جا رہا ہے. دوسری قسم تھی نہی. نہیں وہ جملہ جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے, منع کیا جائے. تو اس میں کسی چیز سے روکنے کا حکم دیا جاتا ہے, جیسے لا تضرب. تیسری قسم تھی استفہام. بھائی استفہام کا معنی ہے کسی سے کوئی سوال پوچھنا, کوئی بات پوچھنا. جیسے مثال دی تھی انہوں نے, حل زارابا زیدن, کیا زید نے پٹائی کی ہے؟ تو دیکھو سوال پوچھا جا رہا ہے. چوتھی قسم تھی تمنی. بھائی تمنی یعنی اردو میں جس کو آپ تمنا کہتے ہیں, تمنا کرنا, کسی چیز کی آرزو کرنا, خواہش کرنا. جیسے لیت زیدن حاضرن. اور پانچویں قسم تھی ترجی. بھائی ترجی وہ جملہ جس میں امید کو ذکر کیا جائے, بھائی کسی کام کی امید کو. جیسے لعل عمرن غائبن, شاید کہ عمر غائب ہوگا یا شاید کہ عمر غائب ہو, یا امید کے ساتھ ترجمہ کر لو, امید ہے کہ عمر غائب ہوگا. تو موقع محل کے مطابق جہاں شاید سے جملہ بہتر بنے وہاں شاید کے ساتھ ترجمہ کر لیں, اور جہاں امید ہے اس کے ساتھ جملہ بہتر بنے تو وہاں اس کے ساتھ ترجمہ کر لیں. اور چھٹی قسم تھی عقود. میں نے بتلایا تھا عقود جمع ہے عقدن کی, اور عقد جو ہے وہ معاملے کو کہتے ہیں. دو انسانوں کے درمیان جو معاملہ طے پا جائے اس کو عقد کہتے ہیں. جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے, جیسے نکاح کا معاملہ ہے, جیسے کرائے پر کوئی چیز لینے کا معاملہ ہے, جیسے کسی کو کوئی تحفہ دینے کا معاملہ ہے. تحفہ دینا عربی میں اس کو ہبہ کہتے ہیں. ہبہ کے اندر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ اس کو قبول کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سب عقود ہیں بھائی. اور تو یہ عقود بھی کیا ہیں؟ یہ انشاء کی قسم ہیں. جیسے مثال ذکر کی بعتو اور اشتریتو. بعتو کا معنی میں نے بیچا اور اشتریتو کا معنی میں نے خریدا. تو بعتو اور اشتریتو کے ذریعے دو انسان عقد کریں تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہے. اور اگر ویسے کسی کو بات بتلائی جائے پھر جملہ انشائیہ نہیں ہے. مثلا آپ اپنے ساتھی کو بتلاتے ہیں بعتو السیارہ, میں نے گاڑی بیچ دی. اب یہ آپ اس کو ویسے ایک بات بتلا رہے ہیں پھر یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے. ہاں جب عقد کر رہے ہیں گاہک اور بیچنے والے کے درمیان جو بات ہو رہی ہے معاملہ کا طے کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے میں نے یہ گاڑی آپ کو بیچ دی اور دوسرا کہتا ہے میں نے خرید لی. دیکھو یہ آپس میں جو عقد کر رہے ہیں خرید و فروخت کا, اس وقت یہ جملہ انشائیہ ہے, ویسے جملہ انشائیہ نہیں. اس سے اگلی قسم تھی ندا. ندا میں نے بتلایا تھا وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے, آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کروایا جائے. جیسے یا زید, اے زید, اور پھر آگے جو بات کی جائے اس کو جواب ندا کہتے ہیں. ایک ہے ندا اور ایک ہے جواب ندا. जो आवाज दी जाए या वगैरह के साथ उसको निदा कहते हैं, और आगे जो बात की जाए उसको जवाबे निदा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं या जैदु, ए जैद इस्मा कलामी, ए जैद मेरी बात सुनो, तो ए जैद यह है निदा, और मेरी बात सुनो यह जवाबे निदा, यह अलग जुमला है, इसका इंशाइया होना जरूरी नहीं। हो सकता है ये जुमला इंशाइया हो सकता है जुमला खबरिया हो, वो उसमें आपने खुद गौर करना है। और इस्मा कलामी ये है ना जवाबे निदा, ये कौन सा जुमला है? इस्मा कलामी मेरी बात सुनो, हुक्म दिया जा रहा है। इस्मा अमर का सिगा है, आप सर पढ़ चुके हैं, इस्मा सुन ले तू, और अमर भी अभी आपने पढ़ा किसकी किस्म है, इंशा मालूम हुआ। या जैदु इस्मा कलामी, या जैदु ये भी है जुमला इंशाइया, ये है निदा, और इस्मा कलामी जवाबे निदा ये भी क्या है, जुमला इंशाइया है। लेकिन जवाबे निदा का हमेशा जुमला इंशाइया होना जरूरी नहीं। तलबा जब अमूमन तरकीब करते हैं वो समझते हैं ये सारा जुमला इंशाइया है, या जैदु इस्मा कलामी निदा और जवाबे निदा को मिलाकर कहते हैं जुमला इंशाइया हुआ। भाई जुमला इंशाइया कैसे, ये तो दो जुमले हैं, ये तो एक जुमला है ही नहीं। भाई बात समझ में आ गई, तो आपने किसको जुमला इंशाइया बनाना है, हमेशा निदा को, और जवाबे निदा में आपने फिर गौर करना है कि वो जुमला खबरिया है या जुमला इंशाइया है। देखो या जैदु इस्मा कलामी, ए जैद मेरी बात सुन ले, निदा भी जुमला इंशाइया और इस्मा कलामी ये अमर है ये भी जुमला इंशाइया। लेकिन जवाबे निदा का जुमला इंशाइया होना जरूरी नहीं। मसलन दूसरी मिसाल ले लो, या जैदु अमरुन आलिमुन, ए जैद अमर आलिम है। देखा अब अमरुन आलिमुन ये है जवाबे निदा और ये जुमला खबरिया है, इसमें बतलाया जा रहा है जैद को कि अमर आलिम है, और इसके कहने वाले को सच्चा है झूठा कहा जा सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो निदा और चीज है, जवाबे निदा। और इसी तरह अगली किस्म है, एक किस्म आ रही है कसम। भाई कसम, उस कसम के अंदर भी मैंने बतलाया था, एक है कसम एक है जवाबे कसम। वल्लाही लअज़रिबन्न ज़ैदन, वल्लाह ये क्या है, ये है कसम, ये है जुमला इंशाइया, और आगे जो जवाब कसम है लअज़रिबन्न ज़ैदन उसमें आपने खुद अलग से गौर करना है, वो भी अमूमन जुमला खबरिया ही होगी, वो अमूमन जुमला खबरिया होगी, लेकिन वो है अलग जुमला, उसमें आपने अलग गौर करना है। बात समझ में आ गई, तो वल्लाह ये क्या है कसम, और लअज़रिबन्न ज़ैदन ये क्या है जवाब कसम, और अमूमन तुलबा इन दोनों को मिलाते हैं और कहते हैं कसम अपने जवाब कसम से मिलकर जुमला इंशाइया हुआ। ये गलत है भाई, जुमला ये तो एक जुमला है ही नहीं, ये तो दो जुमले हैं भाई, एक पहले जुमला इंशाइया है, दूसरे का हुक्म अलग देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तो और इसके बाद फिर एक किस्म इन्होंने इंशा जुमला इंशाइया की आरज बतलाई थी। आरज मैंने बतलाया था किसी से किसी चीज की दरखास्त करना, किसी को नरमी से किसी से कोई काम तलब करना, नरमी से और मीठे और अच्छे अल्फाज से किसी से कोई काम तलब करना। जैसे मिसाल इन्होंने दी, अल्लाह तंजीलु बिना फतुसी बखैरा, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते कि आपको भलाई पहुंचे, खैर पहुंचे, आपको फायदा पहुंचे। तो देखो उसके आने को तलब कर रहा है लेकिन अच्छे और मीठे अल्फाज के साथ, इसको कहते हैं दरखास्त। भाई क्या कहते हैं, दरखास्त करना। अमर भी था, अमर में हुक्म दिया जा रहा था और इसमें दरखास्त की जा रही है अच्छे मीठे अल्फाज से, तो ये आरज है। और एक किस्म आपने ताज्जुब पढ़ी थी, ताज्जुब आपने पढ़ा वो जुमला इंशाइया है जिसमें इंसान अपनी हैरत का इजहार करता है, अपनी हैरानगी का इजहार करता है, अपने ताज्जुब का इजहार करता है। आप कोई चीज देखते हैं और बड़े हैरान हो जाते हैं तो अपनी हैरत का इजहार इन लफ्जों से, उसके दो फेल हैं भाई, फेल ताज्जुब जो हैं वो दो हैं, एक मा अफअलहू और अफइल बिही, जैसे मा अहसनहू और अहसिन बिही। तो ये क्या है, ताज्जुब का इजहार करने के लिए हैं। किसी ने जैद को देखा اور زید اس کو بڑا اچھا لگا کہ اتنا اچھا انسان ہے یا اتنا حسین انسان ہے، تو وہ کہتا ہے ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے، یا کہتا ہے یا اتنی ترجمہ کر لیں ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، یا اسی طرح دوسرا لفظ کیا ہے اس کا احسن بزیدن، زید اس کو تو وہ زید کے بارے میں کہتا ہے احسن بزیدن، کیا معنی؟ ترجمہ وہی ہوگا زید کتنا اچھا ہے، یا دوسرا ترجمہ کر لیں زید کتنا حسین ہے. تو دیکھو اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ آپ کو کوئی بات نہیں بتلا رہا، وہ صرف اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے ایک بات پر کیا ہوئی ہے، حیرانگی ہوئی ہے، تو اس کا اظہار کر رہا ہے. ہاں اس کے بجائے اگر وہ ویسے تعجب کی بات کرتا ہے وہاں پھر اس کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں زید کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اب یہ اپنی بات بتلا رہا ہے کہ میں زید کو دیکھ کر، یہ حیرت کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے، آپ کو ایک بات بتلا رہا ہے. ہاں اس میں اس کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں، دوسرا کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس پر حیران نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور ہاں تمنی اور ترجی میں نے بتلایا تھا یہ بظاہر قریب قریب معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان میں لفظوں میں بھی فرق اور معنی میں بھی فرق ہے. تمنی جو ہے اس کے لیے لیتا کا لفظ آئے گا ہمیشہ، لیتا کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں یہ تمنی ہے، اور ترجی کے لیے لعلہ کا لفظ آئے گا، لعلہ کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے ترجی. تو لفظوں میں بھی فرق، ایک کا لفظ ہے لیتا اور دوسرے کا لفظ ہے لعلہ، اور معنی میں بھی فرق ہے. تمنا جو ہے وہ ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں کی ہوتی ہے. کبھی آپ کا دل کرتا ہے کاش آج بارش ہو جائے، اور ممکن ہے یعنی کہ اسی دن بارش ہو جائے، تو دیکھا ممکن کام کی بھی آپ تمنا کر لیتے ہیں، اور کبھی آپ ناممکن کام کی تمنا کرتے ہیں کاش وہ پورا گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے، اور حالانکہ وہ تو واپس نہیں آ سکتا. اور جبکہ ترجی صرف ممکن کام کی ہوتی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں امید ہے کہ کل بارش ہوگی، امید ہے کہ کل بارش ہوگی، امید تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے، ممکن ہے ممکن، ناممکن کام کے بارے میں امید نہیں کر سکتے. آپ کہیں امید ہے کہ گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے گا، نہیں بھائی گزرا ہوا زمانہ تو واپس نہیں آ سکتا. معلوم ہوا ترجی صرف کس میں ہوگی؟ ممکن کام میں ہوگی، ناممکن میں نہیں. اور نیز ایک اور فرق بھی ہے معنی کے اعتبار سے کہ تمنی جو ہے وہ محبوب چیز کی ہوتی ہے، جو پسند ہو اس کی انسان تمنا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کاش گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے، معلوم ہوا آپ کو وہ زمانہ محبوب ہے. اور جبکہ ترجی وہ محبوب ہو یا غیر محبوب دونوں کی ترجی کی جاتی ہے. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ کسان جو ہے وہ بادل دیکھ کر کہتا ہے شاید بارش ہو جائے، اور کبھی اس کو یہ بارش مرغوب ہوگی پسند ہوگی کہ ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس کو یہ بارش پسند نہ ہو کہ کہیں فصل کو نقصان نہ ہو جائے، لیکن کہے گا دونوں صورتوں میں وہ اسی طرح لعل المطر ينزل، شاید کہ بارش ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب آگے دیکھیے بھائی، فصلن بیداں کے مرکب غیر مفید، آنست کے چون قائل برآں سکوت کند، سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، و آن بر سے قسمس، اول مرکب اضافی. بھائی ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ مرکب مفید کی تھی. صاحب نحو میر نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرکب دو قسم پر ہے، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید. مرکب مفید کے بارے میں بتلایا تھا کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے، یعنی وہ بات کر کے خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. جیسے ضرب زید، اس نے کہا اور خاموش ہو گیا، آپ کو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ زید نے پٹائی کی ہے، جملہ خبریہ. اور یا اس نے کہا اے ضرب عمرن، کہ عمر کی پٹائی کرو، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، تو سننے والے کو پتا چل گیا کہ یہ پٹائی کو طلب کر رہا ہے. معلوم ہوا یہ مرکب مفید ہے. کیا ہے؟ تو مرکب مفید میں کبھی خبر دی جاتی ہے کسی چیز کی، اور کبھی اس میں طلب ہوتی ہے، کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے. آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کہ جس میں بات پوری ہو وہ ہے مرکب مفید. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جس میں بات پوری ہو، سننے والا سمجھ جائے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. मसलन आपने कहा जैद ने पिटाई की है, देखा आपको एक बात का पता चल गया, ये जुमला पूरा है। और अगर जुमला पूरा ना हो तो वो मुरक्कब गैर मुफीद है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, जैद के दोस्त का भाई, जैद के दोस्त का जो भाई है जी, बात पूरी हो गई? हां बात पूरी नहीं हुई। आप कहेंगे क्या हुआ उसको, आप बात तो पूरी करें। तो लफ्जों को आपने नहीं देखना, लफ्ज थोड़े हों या ज्यादा, आपने सिर्फ ये देखना है कि बात पूरी है या पूरी नहीं। अगर बात पूरी है तो वो मुरक्कब मुफीद, और अगर बात पूरी नहीं तो वो मुरक्कब गैर मुफीद। जी देखिए भाई, फसल बिदा के जान ले तू के मुरक्कब गैर मुफीद आनस्त, मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि चूं काइल बर आ सुकूत कुनत, कि जब कहने वाला उस पर सुकूत करता है। सुकूत कुनत, सुकूत करता है यानी खामोशी करता है, यानी वो कहकर खामोश हो जाता है। तो सामे अरा खबरे या तलब हासिल न शवद, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब हासिल न हो, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब हासिल न हो। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? सामे सुनने वाला, सुनने वाला, फिर सुन ले तर्जमा के मुरक्कब गैर मुफीद आनस्त वो है कि चूं काइल बर आ सुकूत कुनत, के जब कहने वाला उस पर खामोशी इख्तियार करे। सामेअरा खबर या तलब हासिल न शवद, सुनने वाले को कोई खबर या कोई तलब हासिल न हो, यानी बात उसमें पूरी न हो। वह आ बर से किस्मत, और वो तीन किस्म पर है। से का क्या माना? तीन। आन का क्या माना? आन वो बर, बर का क्या माना? पर। और वह आन बर से किस्मस, और वो तीन किस्म पर है। अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहला क्या है मुरक्कब? अब मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में आपको बतलाएंगे, ये तीन किस्में बतलाएंगे। कितनी? तीन किस्में, और भी किस्में उलमा ने जिक्र की हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल यही काफी हैं जो ये जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहला मुरक्कब मुफीद जो है वो मुरक्कब इजाफी है। इजाफी का माना है इजाफियुन। लाहौरियुन का क्या माना? लाहौर वाला। पाकिस्तानीयुन का क्या माना? पाकिस्तान वाला। तो यहां भी इसी तरह है, इजाफियुन का माना इजाफत वाला। फिर दोहराएं, इजाफियुन का क्या माना? इजाफत वाला, जिसमें इजाफत हो वो मुरक्कब मुरक्कब इजाफी है। चूं गुलाम ज़ैदीन, जैसे गुलाम ज़ैदीन। भाई याद रखो, उर्दू में आपका के की के साथ एक चीज की निस्बत करते हैं दूसरे की तरफ, किसके जरिए? का के की के जरिए। मसलन मैं कहता हूं जैद का कलम, जैद का कलम, देखो मैंने कलम की निस्बत जैद की तरफ कर दी कि यह कलम किसी और का नहीं है बल्कि किसका है? जैद का है। या मैं कहता हूं अमर की किताब, देखो मैंने किताब की निस्बत किसकी तरफ कर दी? अमर की तरफ कर दी कि यह किताब किसी और की नहीं है बल्कि किसकी है? अमर की है। या मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, देखो मैंने बच्चों की निस्बत किसकी तरफ कर दी? मुसलमानों की तरफ कर दी। तो देखो जैद का कलम, देखो का आ गया बीच में, और अमर की किताब दरमियान में क्या आया? की आ गया। या मुसलमानों के बच्चे दरमियान में क्या आया? के। तो देखो ये एक चीज की निस्बत कभी दूसरी चीज की तरफ की जाती है, इसको इजाफत कहते हैं। एक चीज की निस्बत करना दूसरी चीज की तरफ, इसको क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं। और उर्दू में तो जिस चीज की निस्बत की जा रही है वो बाद में आती है। जैद की किताब, जी मैंने किस चीज की निस्बत जैद की तरफ की? किताब की। और जैद की किताब, किताब पहले है या जैद पहले है? जैद पहले है, किताब बाद में है। तो उर्दू में जिस चीज की निस्बत की जाती है वो बाद में जिक्र की जाती है, लेकिन अरबी में बरअक्स है, जिस चीज की निस्बत की जाती है वो पहले आती है और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है वो बाद में आती है। और उर्दू में तो दरमियान में का के की ये लफ्ज आता है, लेकिन अरबी में दरमियान में कुछ भी नहीं आता। हां आगे जो दूसरा लफ्ज होता है उसके नीचे जेर आ जाती है, क्या आ जाती है, उमूमन जेर आ जाती है। जैसे मैं कहना चाहता हूं जैद की किताब, तो उर्दू में देखो किताब बाद में है और जैद पहले, लेकिन अरबी में मैं कहूंगा किताब ज़ैदिन, तो किताब को मैंने पहले जिक्र किया जिस चीज की निस्बत की जा रही है और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है उसको मैंने बाद में जिक्र किया, और उस पर देखो जेर भी आ गई। अमूमन उस पर क्या आ जाती है, जेर जर आ जाता है, किताब ज़ैदिन, किताब ज़ैदिन जी। अब मैं कहना चाहता हूं अमर का कलम, अमर का कलम क्या कहूंगा, कलम अमरिन। देखा दूसरे लफ्ज पर क्या आ गई, जेर आ गई। तो ये जो दरमियान एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ की जाए इसको इजाफत कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि निस्बत का लफ्ज मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है, जैदुन आलिमुन मिसाल गुजरी थी एक दो सबक कबल, और मैंने क्या कहा था कि जैद एक अलग लफ्ज है, आलिमुन एक अलग लफ्ज, फिर आपने इस आलिमुन के लफ्ज की जैद की तरह, इस आलिमुन के लफ्ज को जैद के साथ जोड़ दिया, आपने आलिमुन के लफ्ज की जैद की तरफ निस्बत कर दी, बात समझ में आ गई। तो देखो वहां भी निस्बत थी और यहां मुरक्कब इजाफी में भी क्या है, निस्बत, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि वो निस्बत तामा थी, वो क्या थी, वहां जो दो हम लफ्जों को जोड़ते थे जुमले के अंदर तो पूरा जुमला बन जाता था, वो जो निस्बत होती थी वो मुस्नद की निस्बत होती थी, किसकी तरफ, मुस्नद इलैह की तरफ, और मुस्नद और मुस्नद इलैह जब मिल जाए तो क्या बन जाता है, पूरा जुमला बन जाता है, तो वो निस्बत तामा थी, उसको क्या कहते हैं, ताम का माना है पूरी हो, पूरी यानी पूरी निस्बत है, इससे पूरा जुमला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जैदुन आलिमुन, मैंने क्या किया आलिमुन की जैद की तरफ निस्बत की, तो वो निस्बत तामा थी यानी पूरी कामिल निस्बत थी जिसे पूरा जुमला बन जाता है, वो मुस्नद की निस्बत थी, किसकी तरफ, मुस्नद इलह की तरफ, जबकि यहां पर ये जो गुला यहां पर जो कहा किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैद, यहां पर जो निस्बत है वह निस्बत तामा नहीं है, एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ तो की गई है लेकिन उससे जुमला पूरा नहीं हुआ। किताब ज़ैदिन क्या तर्जमा, जैद की किताब, कोई बात पूरी है, आप किसी को सारा दिन कहते रहें जैद की किताब, जैद की किताब, वो कहेगा भाई बात तो पूरी करें, उसको क्या हुआ, गुम हो गई है या खराब हो गई है या कोई ले गया है, कुछ तो बताएं हमें, तो ये बात पूरी नहीं, तो वो जिसमें बात पूरी हो उसको क्या कहते हैं, वो भी निस्बत, लेकिन उसको क्या कहते हैं, निस्बत तामा, और ये भी निस्बत है एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत की जा रही है लेकिन इसको कहते हैं निस्बत गैर तामा। तो मुरक्कब इजाफी के अंदर भी निस्बत होती है लेकिन वो कौन सी निस्बत होती है, गैर तामा, क्या होती है, यानी उसमें बात पूरी नहीं, बात पूरी नहीं। तो कहते हैं अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहला जो है वो मुरक्कब इजाफी है, चूं गुलाम ज़ैदिन, जैसे गुलाम ज़ैदिन, क्या तर्जमा होगा गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम। देखो ये गुलाम आप बकर का भी हो सकता था, अमर का भी, खालिद का भी, लेकिन आपने इस गुलाम की निस्बत किसकी तरफ कर दी, जैद की तरफ, और बतला दिया कि यह जैद का गुलाम है, अमर का गुलाम नहीं है भाई। जुज़्वे अव्वल रा मुजाफ गोयंद व जुज़्वे दुवुम रा मुजाफ इलैह, इसके पहले जुज को देखो गुलाम ज़ैदिन, दो जुज हैं, पहला जुज क्या गुलाम, दूसरा जुज क्या ज़ैद, तवज्जो है इस लफ्ज पे नजर रखें, गुलाम ज़ैदिन पहला जुज क्या गुलाम, दूसरा लफ्ज ज़ैद, ये जो पहला जुज होता है इसको मुजाफ कहते हैं, मुजाफ यानी जिसकी निस्बत की गई है, और दूसरे को कहते हैं मुजाफुन इलैही, देखो इलैही मुजाफुन निस्बत की गई है, इलैही इसकी तरफ निस्बत की गई है इसकी, तो पहले को क्या कहते हैं मुजाफ और दूसरे को क्या कहते हैं मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह पर हमेशा क्या आएगा जर आएगा यानी अक्सर वो जेर आएगी, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं जुज़े अव्वल रा मुजाफ गोयन, इसके पहले जुज को मुजाफ कहते हैं, वह जुज़े दुवम, इसको दोम ना पढ़ना, अक्सर तुलबा दोम पढ़ते हैं, दोम नहीं दुवम, दाल पर भी पेश और वाव पर भी, शद्दा भी और पेश भी, दुवम अव्वल पहला दुवम, दूसरा सिवम, सीन के नीचे जेर है और व मुशद्दद है, सिवम, तीसरा चहारम, चौथा पंजम, पांचवा शशम, छठा हफ्तम, सातवा हष्टम, आठवां नहम, नौवां और दहम, दसवां दह, दह दस को कहते हैं ना, तो दहम क्या बन जाएगा, दसवां। बात समझ में? तो कहते हैं जुज़े अव्वल राम मुजाफ गोयंद, इसके पहले जुज को मुजाफ कहते हैं, वह जुज़े दोम राम मुजाफिल है और दूसरे जुज को मुजाफिल है। वह मुजाफिल हमेशा मजरूर बाशद और मुजाफिल हमेशा मजरूर होगा, मुजाफिल हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा। ये पहले किस्म थी किसकी, मुरक्कब गैर मुफीद की। क्या नाम है इसका, मुरक्कब इजाफी। इसके मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं, इसमें इजाफत होती है एक चीज की दूसरी चीज की तरफ, यानी यूं कहें निस्बत होती है एक चीज की दूसरी चीज की तरफ। और ये कौन सी निस्बत है, तामा है या गैर तामा, गैर तामा। तामा में क्या होता है, उसमें बात पूरी होती है और गैर तामा में बात पूरी नहीं होती। और उर्दू में इसका इस मुरक्कब इजाफी का तर्जमा किसके साथ करते हैं, गा के और की दरमियान में ले आते हैं। और उर्दू के अंदर मुजाफ को बाद में कर देते हैं और मुजाफिले को पहले कर देते हैं, उलट देते हैं। तरतीब समझ में आ रही है। गुलाम ज़ैदीन क्या तर्जमा करेंगे, जैद का गुलाम। कलम अमरीन क्या तर्जमा करेंगे, अमर का कलम भाई। और इसी तरह तालिबुल मदरसा, मदरसे का तालिब इलम। बात समझ में आ गई भाई। दुवम, दूसरा जो है मुरक्कबे बिनाई, दूसरा जो है वो मुरक्कबे बिनाई है। व ओ आनस्त, आपकी किताबों में वाओ अलिफ वाओ होगा, इसको वाओ ना पढ़ना, वाओ अलैदा है और ओ ओ का माना वो वो वो। व ओ आनस्त, और वो है कि दो इसमरा यके करदा बाशद, कि दो इस्मों को यके यके यानी एक एक, दो इसमरा यके करदा बाशद, दो इस्मों को एक कर दिया गया हो। वह इसमें वो मुतजम्मीन हर्फे बाशद, और दूसरा इसम वो किसी हर्फ को मुतजम्मीन हो। भाई पहले समझ लो इसको, मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं, मुरक्कब बिनाई इसे कहते हैं कि असल में दो इसम थे और दरमियान में कोई हर्फ भी था, जैसे अहदुन व आशरुन। अहदुन एक इसम और आशारून दूसरा इसम, और दरमियान में वाव भी है। अहदुन व अशर, कितने इसम थे, एक अहद और एक आशर, और दरमियान में वाव एक हर्फ भी है। तो दो इसम थे अलहदा अलहदा, दरमियान में वाव था, फिर इन दोनों को जोड़कर इकट्ठा कर दिया गया और ये जो वाव है इसको हजफ कर दिया गया, और पढ़ेंगे इसको अहदा आशारा। कैसे पढ़ेंगे, अहदा आशारा। तो देखो ये दो इसम थे, इनको जोड़कर एक बना लिया, और दो लफ्जों को जब जोड़ा जाए तो उसको मुरक्कब कहते हैं। मुफरद में एक लफ्ज होता था और मुरक्कब दो या दो से ज्यादा, तो यहां भी देखो दो लफ्जों को जोड़कर एक ही लफ्ज बना दिया। तो अरबी में 11 को कहते हैं अहदा आशारा, क्या कहते हैं, अहदा आशारा। और इसमें दोनों जुज जो हैं ये मबनी होते हैं और इन पर फतहा पढ़ते हैं। तवज्जो है, दोनों जुज क्या होते हैं, मबनी, और दोनों पर फतहा पढ़ते हैं। तो दोनों जुज मबनी अल फतह, अहदा देखो यहां भी दाल पर जबर फतहा है, और आशारा यहां पर भी रा पर फतहा। तो दोनों मबनी अल फतह होते हैं दोनों जुज, यानी दोनों पर जबर पढ़नी है दोनों अज्जा पर। तो ये 11 को अरबी में क्या कहते हैं, अहदा आशारा, और ये असल में क्या था, अहदुन व आशरुन। अहदुन दाल पर भी पेश थी और वाव था दरमियान में, और आशरुन उसमें भी आखिर में क्या थी, पेश थी। फिर इन दोनों को जब मिला दिया, वाव को हजफ किया, क्या बन गया, अहदा आशारा। अब अहदा आशारा याद रखो, ये जो अरबी है ना, अरबी में जब कोई आप लफ्ज बोलते हैं तो उसका आखिर उमूमन बदलता है। जैसे कभी आप पढ़ते हैं जैदुन, कभी जैदन, कभी जैदीन, देखो एक ही लफ्ज है, कभी आप क्या पढ़ रहे हैं जैदुन, कभी क्या पढ़ रहे हैं जैदान, और कभी क्या पढ़ रहे हैं जैदीन। ये जो आखिर इसका बदल रहा है इसको एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मौका महल के मुताबिक होता है। कभी कभार जब अरब अरबी बोल रहा होगा वो कहेगा जैदुन, या किताब में आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा जैदुन, और बाद जगह ऐसी आएंगी वहां आपको पढ़ना पड़ेगा जैदन, और कुछ जगह आएंगी वहां आपको पढ़ना पड़ेगा जैदीन। अब कहां जैदुन पढ़ना है, कहां जैदीन पढ़ना है, कहां जैदन पढ़ना है, ये इल्मे नहव जो हम पढ़ रहे हैं इससे आपको पता चलेगा कि कहां पर जैदुन यानी पेश पढ़ना है, कहां जैदन यानी जबर पढ़ना है, और कहां जैदीन यानी जेर पढ़नी है। पेश, जबर और जेर, इसी को अरबी में कहेंगे जम्मतुन, फतहतुन और कसरतुन। क्या कहेंगे? पेश को कहेंगे जम्मतुन, जम्मा तनवीन आखिर में मैं पढ़ रहा हूं, वैसे सुकून करेंगे जम्मा, जम्मतुन। और जबर जो है उसको कहते हैं फतहतुन, और जो जेर होती है उसको कहते हैं कसरतुन। तो आखिर में वक्फ करेंगे जम्मा फतहा कसरा, जम्मा फतहा और कसरा। जम्मा किसे कहते हैं? पेश को। और फतहा किसे कहते हैं? जबर को। और कसरा किसे कहते हैं? जेर को। तो अरबी के अक्सर अल्फाज जो हैं उनका आखिर बदलता है, कभी पेश पढ़ना पड़ता है, कभी जबर पढ़ना पड़ता है, कभी जेर, या यूं कहो कभी जम्मा पढ़ना पड़ता है, कभी फतहा पढ़ना पड़ता है, और कभी कसरा। और ये आपको कैसे पता चलेगा? किसके जरिए? इल्मे नहव में, और ये इल्मे नहव ही हम पढ़ रहे हैं। ये चूंकि इब्तदाई किताब है, यहां बस चंद मोटी मोटी बातें आएंगी, आपको नहव का तारुफ करवा रहे हैं कि नहव ऐसा इलम है, इसमें ये चीजें होती हैं, ये इनका जिक्र आगे आएगा। तो बस मुख्तसर किताब है, देखो बहुत छोटी सी चंद सफों पर मुश्तमिल है, तो वो सिर्फ चीजों का तारुफ करवा रहे हैं, और तफसील आगे हिदायत नह पढ़ेंगे वहां कुछ तफसील आ जाएगी। फिर उसके बाद आप काफिया किताब उससे अगले साल पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा तफसील आ जाएगी। उसके बाद शरे जामी पढ़ेंगे, उसमें पूरी तफसील आ जाएगी भाई। तो यहां अभी नहमीर में सिर्फ क्या करवाया जा रहा है? नहव का तारुफ करवाया जा रहा है कि नहव कैसा इलम है, उसमें क्या कुछ होता है। तो बस मोटी मोटी बातें कुछ आपको बतला रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि अरबी के अल्फाज का अमूमन आखिर बदलता है, कभी उस पर क्या पढ़ते हैं? जम्मा, कभी क्या पढ़ते हैं? फतहा, और कभी कसरा। याद रखो ये जो हरकतें बदल रही हैं आखिर में, इसको कहते हैं एराब, और वो लफ्ज जिसका आखिर बदलता हो उसको कहते हैं मुअरब। क्या कहते हैं? मुअरब, जिसका आखिर बदलता हो, और जिसका आखिर नहीं बदलता उसको मबनी कहते हैं। तवज्जो है, वो लफ्ज जिसका आखिर बदलता हो, जैदुन, जैदन, जैदीन, कभी जम्मा, कभी फतहा, कभी कसरा, उसको क्या कहते हैं? मुअरब, मीम आइन राबा, मुअरबुन। और जिसका आखिर नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं? मबनी, मबनीयुन, असल में है मबनीयुन या मुशद्दद है, लेकिन वक्फ करके पढ़ते हैं मबनी। तो मुअरब किसे कहते हैं? जिसका वो लफ्ज जिसका आखिर बदलता हो, कभी जम्मा पढ़ना पड़ेगा, कभी फतहा पढ़ना पड़ेगा, और कभी कसरा। और मबनी किसे कहते हैं? जिसका आखिर न बदलता हो। इसी मबनी से है मुरक्कबे बिनाई, इसी मबनी से क्या है? मुरक्कब बिना, ये बिना ये उसी मबनी इसी से बना है। मबनी किसको कहते हैं? जिसका आखिर न बदले। ये जो मुरक्कब बिनाई है इसका भी आखिर नहीं बदलता, एक जैसा रहता है। जैसे आहादा आशारा, देखो दो लफ्ज थे, पहले क्या था? आहादा आशारा, असल में क्या था? आहादुन व आशारुन। आहादुन इस पर क्या पढ़ रहे थे? जम्मा, और दरमियान में वाव था, और आशारुन पर भी क्या पढ़ रहे थे? जम्मा। तो इन पर जम्मा भी आ सकता था, फतहा भी और कसरा भी, लेकिन जब ये दोनों, जब इनको मिलाकर एक कर दिया, वाव को हजफ किया और दोनों को जोड़कर एक बना दिया, तो अब इन दोनों पर सिर्फ जबर पड़ेंगे, ये मबनी बन गया, अब नहीं बदलेगा। आहादा आशारा, अहादा की दाल पर भी जबर और आशारा की रा पर भी जबर। हर जगह आप इसी तरह इनको पढ़ेंगे, इस दाल और रा की हरकत कभी भी नहीं बदलेगी, तो यूं कहेंगे कि इसके दोनों जुज मबनी अलल फता हैं। कैसे कहेंगे? दो जुज थे ना, एक अहद और एक अहदुन और दूसरा अशर, लेकिन जब दोनों को जोड़कर मिला दिया, अब इसके दोनों जुज क्या होंगे? मबनी। क्या होंगे? और दोनों पर क्या पढ़ना है? फतहा यानी जबर पढ़ना है। तो यूं कहेंगे कि इसके दोनों जुज मबनी अलल फता हैं। अहदा आशारा, इसके दोनों जुज क्या हैं? मबनी अलल फता। तो ये दोनों जुज क्या हैं? मबनी। क्या माना मबनी है? अब इनका आखिर कहीं भी नहीं बदलेगा, जहां भी आप अरबी में इनको पढ़ेंगे अहदा आशारा ही पढ़ना पड़ेगा। और मबनी है किस पर? फतहा पर, यानी जबर ही पढ़ेंगे, जेर या पेश नहीं पढ़ेंगे। और फिर याद रखो अहदा आशारा क्या माना? ग्यारह। इसना आशारा क्या माना? बारह। सलासता आशारा क्या माना? तेरह। अरबाता आशारा चौदह। खमसता आशारा पंद्रह। सित्तता आशारा सोलह। सबअता आशारा सत्रह। समानियता आशारा अठारह। तिसअता आशारा उन्नीस। तो ये अहदा आशारा से लेकर तिसअता आशर तक, यानी उन्नीस तक इसी तरह है। दोनों जुज क्या होंगे? मबनी अलल फता, सिवाय इसना आशारा के, जो बारह है। बारह इसना आशारा, इसका दूसरा जुज यानी आशारा की रात तो मबनी अलल फता है, उस पर तो जबरी पढ़ना है, लेकिन इसना आशारा कभी पढ़ेंगे और कभी इस न आशारा पढ़ेंगे। कभी क्या पढ़ेंगे? इस ना आशारा और कभी इस न आशारा, या के साथ, कभी अलिफ के साथ, कभी या के साथ। कभी क्या पढ़ेंगे? इस ना आशारा और कभी क्या पढ़ेंगे? इस न आशारा। देखा, लेकिन आशारा की राह नहीं बदलेगी। मालूम हुआ दूसरा जुज तो मबनी अलल फता ही है, वो नहीं बदल रहा। हां, पहला जुज वो मुअरब है, वो बदल रहा है। जिस लफ्ज का आखिर बदले उसको क्या कहते हैं? मुअरब। तो इसना आशारा क्या है? इसका पहला जुज वो मुअरब और दूसरा जुज मबनी। बाकी अहदा से आशारा से लेकर तिसअता आशारा तक सारे जुज जो हैं, पहला और दूसरा, हर जगह वो मबनी अलल फता हैं। फर्क समझ में आया? मुरक्कबे बिनाई को मुरक्कबे बिनाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों जुज क्या होते हैं? मबनी होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुरक्कबे बिनाई। हां, इसमें अलबत्ता इसना आशारा जो है, इसका दूसरा जुज तो मबनी है, अलबत्ता पहला जुज मुअरब है, वो बदलता है। कभी इसना आशारा आपको पढ़ना पड़ेगा इबारत में और कभी इसने आशारा, और कहां इसना आशारा पढ़ना है और कहां इसने आशारा पढ़ना है, वो इंशाल्लाह आप जब कुछ नहु सीख लेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए भाई, किताब पर कहते हैं दुवुम मुरक्कब बिनाई, दूसरा जो है वो मुरक्कब बिनाई है। वह ओ आनस, और वो है कि दो इसम रा यके करदा बाशद, के दो इस्मों को एक कर दिया हो। ये दो इस्मों को क्या माना एक कर दिया? जोड़ कर मिला कर एक लफ्ज बना दिया। अहदा आशारा, देखो इकट्ठा कर दिया, कि दो इस्म रा यके करदा बाशद, दो इस्मों को एक कर दिया गया हो। वह इसमें दुवम मुतजमिन हरफे बाशद। अच्छा, मैंने क्या बताया? अहदा आशारा असल में क्या था? अहदू आशरू। तो ये जो वाव है दरमियान से, इसको हजफ कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। और बाज यू तकरीर करते हैं, वो कहते हैं ये जो वाव है ये दूसरे हर्फ के अंदर छुप गया, ये दूसरे जुज के अंदर छुप गया। अहदू आशरून, ये वाव किस में छुप गया? दूसरे जुज यानी आशरून में छुप गया। बाज को क्या कहते हैं? इस वाव को हजफ कर दिया, और बास कैसे कहते हैं? ये इसके अंदर छुप गया। तो मुतजमीन का माना होता है एक चीज दूसरी के अंदर हो। तो यहां पर भी जब वह आशारून के अंदर छुप गया तो हम क्या कहेंगे? कि वह आशारून के अंदर है, वह आशारून के जिमन में है। लफ समझ में आ रहा है? जब दूसरा, जब हर्फ वह किस में छुप गया? आशारून में, तो क्या कहेंगे? वह आशर उनके जिमन में है या इसके अंदर छुपा हुआ है, यूं कह लो, बात समझ में आ गई, यही बयान कर रहे हैं। वह इसमें दो वो मुतजम्मीन है हरफे बाशत, और दूसरा जुज जो है, दूसरा इसम, दो इसम थे ना, तो दूसरा इसम मुतजम्मीन है हरफे बाशत, वो हर्फ को मुतजम्मीन है। क्या माना हर्फ को मुतजम्मीन है? आहदा आशारा, पहला इसम क्या? आहदा, तवज्जो से भाई, आहदा आशारा, कितने इसम थे? दो, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? एक बना दिया। तो पहला इसम क्या है? आहदा। दूसरा क्या है? आशारा। तो और वह किसके अंदर छुप गया? आशारा दूसरे में। तो क्या कहेंगे कि दूसरा इसम मुतजम्मीन हर्फ है। दूसरा इसम क्या माना मुतजम्मीन हर्फ है? कि इसके अंदर वो हर्फ छुपा हुआ है, इसके जिमन में है, इसके अंदर है। बात समझ में आ गई, ये माना है। वह इसमें दो मुतजम्मीन हर्फे बाशत, और दूसरा इसम जो है वो मुतजम्मीन हर्फे है, वो उसके जिमन में हर्फ है, उसके जिमन में हर्फ है, यानी उसके अंदर हर्फ छुपा हुआ है। चूं अहदा आशारा, जैसे अहदा आशारा ता तिसअत आशारा, ता का माना है तक, तक उर्दू में इला, अरबी में कहते हैं ना इला, इला उर्दू में कहते हैं तक। अहदा आशारा से तिसा आशारा तक, अहदा आशारा से तिसाता आशारा तक, ये तक के लिए फारसी में क्या लफ्ज बोलते हैं? ता जो आ रहा है दरमियान में। चूं अहदा आशारा, जैसे अहदा आशारा ता तिसाता आशारा तक, के दर असल के असल में, दर असल के असल में अहदू व आशरुन व तिसातू व आशरुन बुदास्त, के असल में ये अहदू व आशरुन और तिसातू व आशरुन थे। वरा हजफ करदा, वह को हजफ कर दिया यानी उसको गिरा दिया। हर दो इसमरा यके करदन, दोनों इसमों को एक कर दिया। हर दो इसमरा, दोनों इसमों को यके करदंद, एक कर दिया। वह हर दो जुज मबनी बाशत बरफता, और इसके दोनों जुज मबनी होंगे बरफता, किस पर? अहदा आशारा के दोनों जुज क्या होंगे? मबनी अलल फता। क्या माना मबनी? क्या माना? इनका आखिर नहीं बदलेगा, और मबनी अलल फता होंगे, क्या माना? इन पर फतहा, दोनों जुजों पर फतहा पढ़ना है। अहदा आशारा, और इसी तरह तिसाता आशारा, ये माना है। वहर दो जुज मबनी बाशत बरफता, और दोनों जुज जो हैं वो मबनी बरफता होंगे। इल्ला इसना आशारा, सिवाय किसके? इस इल्ला का माना है सिवाय, सिवाय इल्ला, सिवाय इसना आशारा, सिवाय इसना आशारा के, कि जुज़े अव्वल मोरबस, कि उसका पहला जुज, इसना आशारा का पहला जुज क्या, वो क्या है? इसना, और दूसरा जुज क्या है? आशारा। आशारा तो मबनी अल फता ही पढ़ेंगे आप, हर जगह इस पर जबर ही पढ़ेंगे, लेकिन इसना को उसका आखिर बदलेगा। कभी क्या पढ़ेंगे? इसना, और कभी क्या पढ़ेंगे? इसने, तो यूं पढ़ेंगे इसना, कभी इसना आशारा, यूं कभी इसना पढ़ेंगे इस तरह इसना आशारा, और कभी इसने पढ़ेंगे इसने आशारा। सूरत समझ में आ गई। सिवम मुरक्कब मना सर्फ, सिवम सीन के नीचे जेर पढ़ना भाई, से का क्या माना? तीन, सिवम तीसरा, सिवम तीसरा, सिवम मुरक्कब मना सर्फ, तीसरा जो है मुरक्कब मना सर्फ है। पहला क्या था? मुरक्कब गैर मुफीद की कुल कितनी किस्में? तीन। पहली किस्म मुरक्कब इजाफी को मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इजाफत होती है, यानी एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत होती है। दूसरा क्या है? मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे बिनाई को मुरक्कबे बिनाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों जुज, यूं कहें इसके दोनों जुज मबनी होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुरक्कबे बिनाई। और तीसरा क्या है? मुरक्कबे मनासर भाई, व ओ आनस, इसको समझ लें भाई। मुरक्कब इजाफी में एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत करते थे, क्या करते थे? और मुरक्कब बिनाई में निस्बत नहीं करते थे, दो इस्मों को वैसे आपस में जोड़ते थे, और दरमियान में क्या होता था? हर्फ छुप जाता था। तवज्जो है, फिर सुनो, मुरक्कबे इजाफी में क्या करते थे, एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत करते थे, और मुरक्कबे बिनाई में निस्बत नहीं करते, वैसे दो इस्मों को जोड़ते हैं और दरमियान में दूसरे में क्या छुप जाता है, हर्फ छुप जाता है। जबकि तीसरा मुरक्कबे मनासर्फ, इसमें भी निस्बत नहीं होगी, दूसरे में भी निस्बत नहीं थी, तीसरे में भी निस्बत नहीं होगी, और इसमें भी दो इस्मों को जोड़कर एक बनाएंगे। लेकिन दूसरे से फर्क, मुरक्कबे बिनाई से इसका फर्क यह है कि मुरक्कबे बिनाई में दूसरे में एक हर्फ छुप जाता था, यहां कोई हर्फ नहीं छुपेगा, यहां कोई हर्फ नहीं छुपेगा। बात समझ में आ गई। मुरक्कबे इजाफी किसे कहते हैं, एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत हो, और मुरक्कबे बिनाई में निस्बत होगी नहीं, मुरक्कबे मनासर्फ में निस्बत होगी नहीं, हाँ, लेकिन मुरक्कबे बिनाई में जब दो इस्मों को मिलाकर एक करेंगे तो दूसरे में क्या छुप जाएगा, हर्फ छुप जाएगा, जबकि मुरक्कबे मनासर्फ में दूसरे के अंदर हर्फ नहीं छुपेगा। ये फर्क है, बात समझ में आ गए। तो अब याद रखो, इधर देखिए, मुरक्कबे मनासर्फ इसे कहते हैं, दो इस्म थे, अलहदा अलहदा थे, उन दोनों को जोड़कर एक इस्म बना लिया, और दरमियान में कोई हर्फ भी नहीं छुपा हुआ। सूरत समझ में आ गई। देखिए भाई, कहते हैं मुरक्कबे मनासर व ओ आनस, और वो है कि दो इसमरा यके करदा बाशंद, कि दो इस्मों को एक कर दिया गया हो, व इसमें दुवम मुतजमीन हर्फे न बाशद, और दूसरा इसम किसी हर्फ को छुपाए अपने जिमन में लिए हुए न हो, कोई हर्फ उसके अंदर छुपा हुआ न हो। चूं बाला बक्का वह हजरा मऊत, बाला बक्का और हजरा मऊत, भाई बाला बक्का याद रखो, ये एक शहर का नाम है, किसका नाम है, और ये शहर का नाम बाला बक क्यों रखा, क्योंकि इसके बादशाह का नाम बक्कून था, जो वहां का बादशाह था उसका नाम क्या था, बक्कून, और जो उसके अंदर एक बुत था उस बुत का नाम था बालुन, तो बालुन किसका नाम था, बुत का, उसी शहर के अंदर, और बक्कून किसका नाम था, बादशाह का, तो बादशाह ने जब ये नया शहर बनाया जिसके अंदर ये बुत था तो उसने इसका नाम बाला बक रख दिया, अपने नाम के साथ बुत का नाम मिलाकर इस शहर का नाम रख दिया। सूरत समझ में आ गई। तो क्या, तो देखो बालुन अलग इसम था, बक्कून अलग था, दोनों को मिलाया और कैसे पढ़ेंगे, बाला बक्कू, बाला बक्कू, बाला बक्कू। इसमें याद रखें, तवज्जो से सुनो जरा, मौरब किसे कहते हैं, जिसका आखिर बदलता हो, कभी फतहा कभी कभी जम्मा कभी फतहा और कभी कसरा, और मबनी किसे कहते हैं, जिसका आखिर बिल्कुल नहीं बदलता, बस जैसा है वैसा ही हर जगह पढ़ना पड़ेगा। और ये जो मुरक्कबे मनासर्फ है, इसमें याद रखना, जब दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया तो पहले इसम, पहला जुज जो होगा, पहला इसम जो होगा वो मबनी अलल फता होगा। बाला, देखो इस्लाम पर जबर पड़ना है हमेशा, तो ये मबनी है और मबनी अलल फता है, बात समझ में आ रही है, मबनी है क्या माना, ये बदलेगा नहीं, और पढ़ना क्या इस पर, फता, तो इसको क्या कहेंगे, मबनी अलल फता। और जो दूसरा जुज है बक, बक्कुन, उस पर पेश भी पढ़ सकते हैं और जबर भी पढ़ सकते हैं, जेर नहीं पढ़ सकते, उस पर पेश भी पढ़ सकते हैं और जबर भी, लेकिन जेर नहीं, यानी वो गैर मुनसरिफ होगा, क्या होगा, गैर मुनसरिफ। याद रखना, अभी करीब में किस्में तफसील आने वाली है, बस अभी सिर्फ इतना समझ लें कि एक इसम की एक किस्म गैर मुनसरिफ है, मौरब, मौरब की एक किस्म क्या है, फिर दोहराएं, मबनी किसे कहते हैं, जिसका आखिर नहीं बदलता, और मौरब किसे कहते हैं, जिसका आखिर बदलता है। इसी मौरब की एक किस्म का नाम गैर मुनसरिफ है, क्या नाम है भाई, देखो अब आप पढ़ रहे थे जैदुन जैदन जैदिन, तीनों तरह इसको पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ लफ्ज अरबी के ऐसे हैं कि जिनका आखिर बदलता तो है लेकिन उन पर जेर नहीं आती, और नीज उन पर तनवीन भी नहीं आती। जैदुन, देखो ये तो तनवीन आप पढ़ रहे हैं आखिर में, दो पेश, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو پیش یا دو زیر، اس کو تنوین کہتے ہیں. تو زیدن پر تنوین بھی آ رہی ہے، زیدن، 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 اور زبر، زیر، پیش تینوں آ رہے ہیں تنوین کے ساتھ. لیکن جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ ایسا معرب ہے جس کا آخر بدلتا تو ہے لیکن اس پر زیر بھی نہیں آتی اور اس پر تنوین بھی نہیں آتی، اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں. یعنی زبر بھی آئے گا تو اکیلا زبر آئے گا، تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا. پیش بھی آئے گی تو اکیلی پیش آئے گی، تنوین کے ساتھ نہیں آئے گی. تو مرکب منع صرف، مرکب منع صرف، اس کا پہلا جز وہ مبنی علی الفتح ہوگا اور دوسرا جز جو بکن ہے وہ معرب غیر منصرف ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا معنی معرب غیر منصرف؟ یعنی وہ بدلے گا، معرب ہے تو وہ آخر اس کا بدلے گا لیکن کسرہ بھی نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں. یعنی پیش بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی آ سکتا ہے. بعل بکو، توجہ ہے، بعل بکو، دیکھو کاف پر میں پیش پڑھ رہا ہوں، تنوین نہیں پڑھ رہا، بعل بکن، یہ تنوین اگر میں پڑھوں یہ غلط ہے. تو بعل بکو، بعل، یہ دیکھو یہ مبنی علی الفتح اور بکو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. اور نیز اس کو بعض جگہ آپ کو پڑھنا پڑے گا بعل بکا کاف پر زبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ بالا بکا اور بالا بکو، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس موقع کے مطابق پڑھنا ہے. ویسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو بھی پڑھ دیں، کہیں پر پیش ہی پڑھنا پڑے گا اور کہیں پر زبر. تو آخر اس کا بدل تو رہا ہے لیکن کس طریقے پر بدل رہا ہے؟ غیر منصرف کے طریقے پر بدل رہا ہے. یعنی اور غیر منصرف پر کیا ہوتا ہے؟ زیر بھی نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں. تو اسی طرح بالا بکو کے آخر میں بھی پیش بھی کے آخر میں بھی کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں. پیش بھی آ سکتا ہے اکیلا اور اکیلی زبر بھی آ سکتی ہے بغیر تنوین کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح حضر موتو، حضر موتو، دیکھو یہ بھی ایک نام ہے. یہ الگ الگ دو اسم تھے، ایک اسم کیا ہے پہلا حضر اور دوسرا کیا ہے موتو، ان دونوں اسموں کو ملا دیا، ملا دیا. دیکھو بالا بکو میں نے بتایا یہ شہر کا نام ہے، اسی طرح حضر موتو یہ بھی کسی شہر یا قبیلے کا نام ہے، شہر یا قبیلے. تو حضر ایک اسم اور موتو دوسرا اسم. اور اس کیا پڑھا آپ نے؟ پہلا جز کیا ہے؟ مبنی علی الفتح، حضر را پر ہمیشہ زبر پڑھنا ہے. اور دوسرا جز کیا ہے؟ موتو، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ معرب غیر منصرف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کیا معنی معرب غیر منصرف؟ تنوین اور کسرہ نہیں آئیں گے اور زبر بھی آ سکتا ہے بغیر تنوین کے اور پیش بھی آ سکتی ہے بغیر، یعنی ضمہ اور فتحہ تو آ سکتا ہے، کسرہ اور تنوین نہیں. تو حضر موتو، حضر موتا یوں پڑھ سکتے ہیں. پھر سنو، کیا؟ حضر موتو اور حضر موتا اور حضر موتی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. یا حضر موتین تنوین پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. یا حضر موتن تنوین پڑھ سکتے ہیں؟ یا حضر موتن تنوین نہیں، صرف پیش یا زبر پڑھ سکتے ہو بغیر تنوین کے، زیر اور تنوین نہیں پڑھ سکتے. تو کہتے ہیں چون بالا بکا و حضر موتو، جیسے بالا بکا اور حضر موتو کے جزء اول مبنی باشد بر فتح، کہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ مبنی ہوگا بر فتح، کس پر؟ فتح پر. بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء کے نزدیک، معلوم ہوا اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے. کچھ علماء فرماتے ایک بات کرتے ہیں، دوسرے علماء دوسری بات کرتے ہیں، لیکن جن کا قول قوی تھا، جو زیادہ علماء کی بات تھی، اس کو ذکر کر دیا، دوسری کو ذکر نہیں کیا. بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء کا یہ مذہب ہے، یعنی اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا جز کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح و جزو دوم معرب، اور اس کا دوسرا جز و جزو دوم معرب، اور اس کا دوسرا جز معرب ہوگا. دوسرا جز کیا ہوگا؟ معرب. اور کون سا معرب؟ غیر منصرف. इसीलिए तो इसको मुरक्कब मना सर्फ कहते हैं। मना सर्फ का माना गैर मुनसरिफ, मना सर्फ का क्या माना, तो ये मुरक्कब मना सर्फ है यानी मुरक्कब गैर मुनसरिफ, यानी जिसका दूसरा जूज क्या है, मौरब गैर मुनसरिफ है। बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए बस करें भाई, खुलासा जरा दोबारा सुन लें। आज आपने पढ़ा कि मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि जिस पर कहने वाला बात करने वाला जब खामोश हो जाए, सुकूत इख्तियार करे, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो, यानी आसान लफ्जों में जिसमें बात पूरी ना हो उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। और उसकी इन्होंने तीन किस्में बयान की, एक मुरक्कब इजाफी, एक मुरक्कब बिनाई और एक मुरक्कब मनासर। और मैंने बतलाया और उलमा और भी किस्में बयान करते हैं, लेकिन ये चूंकि इब्तदाई किताब है तो जो आसान थी और आसानी से तलबा याद कर सकते थे वो जिक्र फरमा दी, बाकी तफसीलात और किताबों में आ जाएंगी। तो पहली किस्म क्या थी उसकी, मुरक्कब इजाफी, दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई और तीसरी मुरक्कब मनासर। मुरक्कब इजाफी को मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं, इसमें एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत होती है यानी इजाफत होती है, और पहले जूस को क्या कहते हैं, मुजाफ, और दूसरे जूस को मुजाफुन इलै, और मुजाफ इलै हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। और उर्दू में इसका तर्जमा कैसे करते हैं कि का के की के साथ करते हैं, और नीज इसको उलट देते हैं, उर्दू में मुजाफिले को पहले ले आते हैं और मुजाफ को का के की के बाद ले जाते हैं। और दूसरी किस्म जो थी मुरक्कब गैर मुफीद की वो मुरक्कब बिनाई है। मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं, हाँ आसान सी बात है, दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया और दूसरे में क्या छुप गया, हर्फ छुप गया, तो इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब बिनाई। और मुरक्कब बिनाई क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके दोनों जूज क्या होते हैं, मबनी अल फता, जैसे अहदा आशारा से लेकर तिसाता आशारा तक, अलबत्ता इसमें इसना आशारा कि उसका पहला जूज क्या है, मुअरब है, वो कहीं इसना आशारा आप पढ़ेंगे और कहीं इसने आशारा आप पढ़ेंगे। और तीसरी किस्म क्या है, मुरक्कब मनासर। मुरक्कब मनासर किसे कहते हैं कि दो इस्मों को जोड़कर एक कर दिया और दूसरे में कोई हर्फ भी छुपा हुआ ना हो, और इसको किस तरह पढ़ते हैं, पहला जूज क्या होता है, मबनी अल फता, और दूसरा जूज मुअरब होता है गैर मुनसरिफ। मुअरब होता है गैर मुनसरिफ क्या माना, उस पर कसरा भी नहीं पढ़ेंगे और तनवीन भी नहीं, और इसी चूंकि दूसरा जूज गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है इसीलिए इसका नाम भी क्या है, मुरक्कब मनासर्फ है। बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? चलिए बस, बेहादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।